एहेस्केल अध्याय 38। एहेस्केल अध्याय 38 में पद 1 और 2। फिर यहोवा का ये वचन मेरे पास पहुंचा, हे मनुष्य के संतान, अपना मुंह मागोग देश के गोग की ओर करके, जो रोश मेशेक और तूबल का प्रधान है, उसके विरुद्ध भविष्यवाणी कर। अनेक विचारकों के अनुसार रोश आज का रूस है, मेशेक मॉस्को का प्राचीन नाम है, तूबल रूस का आधुनिक नगर तोबलेक है। एहेस्केल अध्याय 38 पद 3 से लेकर 6 तक। और ये कह, हे गोग, हे रोश मेशेक और तूबल के प्रधान, परमेश्वर यहोवा यू कहता है, देख, मैं तेरे विरुद्ध हूं। मैं तुझे घुमा ले आऊंगा और तेरे जबड़ों में आंकड़े डालकर तुझे निकालूंगा, और तेरी सारी सेना को भी, अर्थात घोड़ों और सवारों को, जो सब कवच पहने हुए एक बड़ी भीड़ है, जो फरी और ढाल लिए हुए सबके सब तलवार चलाने वाले होंगे, और उनके संग फारस कूश और पूत को, जो सबके सब ढाल लिए और टोप लगाए होंगे, और गोमेर और उनके सारे दलों को, और उत्तर दिशा के दूर दूर देशों के तो मरगा के घराने और उसके सारे दलों को निकालूंगा। तेरे संग बहुत से देशों के लोग होंगे। अब भविष्यवाणी का रुख गोग की ओर है। ये वे लोग थे जो कोकेशिया के क्षेत्र और कोकेशिया के पर्वतों में निवास करते थे। यही आज का रूस कहलाता है। मेशक और तूबल के लोग स्कूती कहलाते थे। फारस आज रूस का एक भाग, फारस का प्राचीन प्रदेश है, और इनके साथ इराक, कूश और ईरान, एथियोपिया, लीबिया तथा गोमेर, आज का जर्मनी अर्थात पूर्वी जर्मनी और पोलैंड, तथा तोगर्मा अर्थात तुर्किस्तान, युगोस्लेविया, रोमानिया आदि सब संगठित राष्ट्र सेना होंगे। एहेस्केल अध्याय 38 पद 7 और 8। इसलिए तू तैयार हो जा, तू और जितनी भीड़ तेरे पास इकट्ठी हो, तैयार रहना, और तू उनका अगुआ बनना। बहुत दिनों के बीतने पर तेरी सुधि ली जाएगी। देखिए, भविष्यवाणी का समय भी दिया गया है। एहेस्केल अध्याय 38 पद 8। और अंत के वर्षों में तू उस देश में आएगा जो तलवार के वश से छूटा हुआ होगा, और जिसके निवासी बहुत सी जातियों में से इकट्ठे होंगे, अर्थात तू इसराइल के पहाड़ों पर आएगा जो निरंतर उजाड़ रहे हैं, परंतु वे देश देश के लोगों के वश से छुड़ाए जाकर सबके सब निडर रहेंगे। परमेश्वर पहले से ही कह रहा है कि जब इसराइलियों का पुनर्वास होगा, तब ये सब राष्ट्र एक होकर उस पर आक्रमण करेंगे। रूस, पूर्वी यूरोप राष्ट्र, इराक, ईरान, लीबिया, एथियोपिया, बालकान आदि। बालकान दक्षिण पूर्वी यूरोप के राष्ट्र है। एहेस्केल अध्याय 38 पद 9 से लेकर 11 तक। तू चढ़ाई करेगा और आंधी की नाई आएगा, और अपने सारे दलों और बहुत देशों के लोगों समेत मेघ के समान देश पर छा जाएगा। परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, उस दिन तेरे तन में ऐसी ऐसी बातें आएंगी कि तू एक बुरी युक्ति भी निकालेगा, और तू कहेगा कि मैं बिन शहरपना के गांवों के देश पर चढ़ाई करूंगा, और ये देश मेरे सामर्थ के आगे अपनी रक्षा करने में असहाय हो जाएगा। एहेस्केल अध्याय 38 पद 11 से लेकर 13 तक। मैं उन लोगों के पास जाऊंगा जो चैन से निडर रहते हैं, सो सब के सब बिना शहरपना और बिना भेड़ों और पल्लों के बसे हुए हैं, ताकि छीन कर तू उन्हें लूटे और अपना हाथ उन खंडरों पर बढ़ाए जो फिर बसाए गए, और उन लोगों के विरुद्ध फेरे जो जातियों में से खटे हुए थे, और पृथ्वी की नाभि पर बसे हुए पशु और संपत्ति रखते हैं, शबा और दादान के लोग और तर्शिश के व्यापारी अपने देश के सब जवान सिंहों समेत तुझसे कहेंगे, क्या तू लूटने को आता है? क्या तूने धन छीनने, सोना चांदी उठाने, पशु और संपत्ति ले जाने और बड़ी लूट अपना लेने को अपनी भीड़ इकट्ठी की है? शबा और दादान ये सऊदी अरब है, तर्शीश इंग्लैंड है, जवान सिम अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा हो सकते हैं। ये लोग रूस के इस आक्रमण का विरोध करेंगे। मेरी रुचि का विषय है कि सऊदी अरब इसराइल पर रूस के हमले के विरुद्ध आवाज उठाएगा। इसराइल को सऊदी अरब की सेना के आधुनिकीकरण से घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि वो राष्ट्र इसराइल के विरोध में नहीं होगा। एहेस्केल अध्याय 38 पद 14। इस कारण हे मनुष्य के संतान, भविष्यवाणी करके गोग से कह, अर्थात गोग के प्रधान शासक से। एहेस्केल अध्याय 38 पद 14 और 15। परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, जिस समय मेरी प्रजा इसराइल निडर बसी रहेगी, क्या तुझे इसका समाचार ना मिलेगा? और तू उत्तर दिशा के दूर दूर स्थानों से आएगा, उत्तर दिशा के दूर दूर सिवानों से। यदि आप नक्शे में यरूशलेम के ठीक उत्तर में चलें, तो आप सीधे रूस में प्रवेश करेंगे। मॉस्को यरूशलेम के उत्तर में स्थित है। एहेस्केल अध्याय 38 पद 15 और 16। तू और तेरे साथ बहुत सी जातियों के लोग जो सबके सब घोड़ों पर चढ़े हुए होंगे, अर्थात एक बड़ी भीड़ और बलवंत सेना, और जैसे बादल भूमि पर छा जाता है, वैसे ही तू मेरी प्रजा इसराइल के देश पर ऐसी चढ़ाई करेगा। इसलिए हे गोग, अंत के दिनों में ऐसा ही होगा कि मैं तुझसे अपने देश पर इसलिए चढ़ाई कराऊंगा कि सब मैं जातियों के देखते तेरे द्वारा अपने को पवित्र ठहराऊं, तब वे मुझे पहचान लेंगे। मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि इतिहास में ऐसा आज तक नहीं हुआ है कि कोई कहे ये भविष्यवाणी पूरी हो गई है। यहां ध्यान देने योग्य बात यह है कि वो कहता है अंत के दिनों में, अर्थात इसराइल के पुनर्वास के बाद ये युग आज का युग है। एहेस्केल अध्याय 38 पद 17 से लेकर 21 तक। परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, क्या तू वही नहीं जिसकी चर्चा मैंने प्राचीन काल में अपने दासों के, अर्थात इसराइल के उन भविष्यत वक्ताओं द्वारा की थी, जो उन दिनों में वर्षों तक ये भविष्यवाणी करते गए कि यहोवा गोग से इसराइलियों पर चढ़ाई कराएगा, और जिस दिन इसराइल के देश पर गोग चढ़ाई करेगा, उसी दिन मेरी जलजलाहट मेरे मुख से प्रकट होगी। परमेश्वर यहोवा की वाणी है। और मैंने जलजलाहट और क्रोध की आग में कहा कि निस्संदेह उस दिन इसराइल के देश में बड़ा भुईडोल होगा, और मेरे दर्शन से समुद्र की मछलियां और आकाश के पक्षी, मैदान के पशु और भूमि पर जितने जीव जंतु रेंगते हैं और भूमि के ऊपर जितने मनुष्य रहते हैं सब कांप उठेंगे, और पहाड़ गिराए जाएंगे और चढ़ाइयां नाश होंगी, और सब भीते गिरकर मिट्टी में मिल जाएंगी। परमेश्वर यहोवा की ये वाणी है कि मैं उसके विरुद्ध तलवार चलाने के लिए अपने सब पहाड़ों को पुकारूंगा, और हरेक की तलवार उसके भाई के विरुद्ध उठेगी। ये भविष्यवाणी बड़ी रोचक है क्योंकि आज रूस में गृह युद्ध कैसे हालात है। पोलैंड, हंगरी, चेकोस्लोवाकिया आदि रूस से रुष्ट है, अतः आधा विनाश तो रूस का इस कारण ही हो जाएगा। परंतु परमेश्वर कहता है, एहेस्केल अध्याय 38 पद 22, और मैं मरी और खून के द्वारा उससे मुकदमा लड़ूंगा, और उस पर और उसके दलों पर और उन बहुत सी जातियों पर जो उसके पास होंगी मैं बड़ी झड़ी लगाऊंगा और ओले और आग गंधक बरसाऊंगा। परमेश्वर ने इसराइल के बैरियों पर पहले भी ये हथियार काम में लिए हैं। यहोशू के समय परमेश्वर ने उनके बैरियों पर स्वर्ग से चट्टाने और आग बरसाई थी। एहेस्केल अध्याय 38 पद 23, इस प्रकार मैं अपने को महान और पवित्र ठहराऊंगा और बहुत सी जातियों के सामने अपने को प्रकट करूंगा, तब वे जान लेगी कि मैं यहोवा हूं। परमेश्वर इस आक्रमणकारी सेना को भूकंप, ग्रहयुद्ध, ओले, वर्षा, आग और गंधक की मार से नाश कर देगा। क्या ये परमाणु युद्ध होगा? क्या अमेरिका इस युद्ध में भाग लेगा? ये आग और गंधक क्या परमाणु युद्ध के कारण होगा? ये अति संभव है कि वो परमाणु विनाश का वर्णन कर रहा है जो रूस और अमेरिका के बीच होगा। ये केवल कल्पना है, बाइबल में उल्लेख नहीं है। मेरे विश्वास में कलीसिया का उठाया जाना इसी के साथ साथ होगा। हम इसे अगले अध्याय में देखेंगे। अनेक जनों का अकस्मात ही गायब हो जाना, ये सोचने का विषय है। बाइबल साधनों का उल्लेख नहीं करती है, परंतु जो घटनाएं लिखी हैं वे होकर ही रहेंगी। बड़े भूकंप, पहाड़ और मैदान सब हिल जाएंगे, भूसंकलन होगा, भारी वर्षा होगी, ओलावृष्टि होगी, आग और गंधक बरसेगा तथा ग्रह युद्ध होंगे। रूस की विशाल सेना के विनाश के ये अलौकिक साधन होंगे। परमेश्वर उन आक्रमणकारी सेनाओं को विनाश करेगा।